परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो संदेश है वो है बाइबल में से हमने एफिशिएंट एफसीओं की जो पुस्तक है उसका 6:10-18 से लिया गया है। प्रभु के हथियार, प्रभु के हथियार, एफसीओं 6:10-18 हम पढ़ेंगे इसे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य या सच्चाई से अपनी कमर घसकर, यानी कि सच्चाई का बेल्ट, धार्मिकता का जो कवच वो पहनकर, और पाँव में सुलह के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम सब इस वचन से हम जानते हैं इस वचन को, हथियार जो परमेश्वर का जो हथियार है वो है आमतौर पर, अगर हम आमतौर पर हम हथियार को हम आमतौर पर हम हथियार शब्द को हम लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो लोहे से या लोहा से जो बनाया हुआ कवच जो एक सिपाही युद्ध करने के लिए, युद्ध जाने के लिए वो पहनता है ताकि वो अपने आप को बचा सके या अपनी हिफाजत कर सके। पुराने समय में अगर सिपाही अगर युद्ध में जाना चाहते हो तो युद्ध जाने से पहले वो अपने आप को इस लोहे की जो कवच है वो अपने शरीर पे चढ़ाते थे ताकि जो दुश्मन है उनके जो तीर है और दुश्मन के जो तलवार है उनसे बच सके। अगर कोई सिपाही उसका जो हथियार है उनमें से कोई भी एक चीज को खो दे, हो सकता था कि वो युद्ध में चोट खा सके और हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। तो प्रभु का जो वचन है आज यहाँ आत्मिक युद्ध के बारे में कहता है, आत्मिक युद्ध और आत्मिक जो दुश्मन है, जो शत्रु है हमारे आत्मिक शत्रु है उसके बारे में यहां कहता है। वो कहता है कि हम किस तरह इन आत्मिक शत्रु और आत्मिक युद्ध में हम किस तरह से जय पा सके। सबसे पहला जो हमारा जो शत्रु है, आत्मिक शत्रु, वो हम खुद है। हमारे जो अंदर एक गुनाह करने की जो जो स्वभाव है, वही हमारे शत्रु है। दूसरा जो शत्रु है, आत्मिक शत्रु, वो है हमारा इस दुनिया के लिए मोहब्बत। तीसरा जो हमारा शत्रु है, आत्मिक शत्रु, वो है इब्लीस, शैतान। ये जो तीसरा शत्रु है, कभी कभी एक गुजरने वाला शेर की तरह आता है, कभी कभी वो आता है एक सांप की तरह। जैसे वो आदम और हव्वा के पास आया, वो कभी कभी हमारे पास सांप के रूप में आता है, और कभी कभी वो फरिश्ते के रूप में आता है। तो परमेश्वर जो, वो हमें क्या सलाह देता है? हमारे जो शत्रु है शैतान, हमारे खिलाफ आता है हमें हराने के लिए, कमजोर करने के लिए। तो प्रभु जो हमारा है, वो हमारे लिए एक सलाह देता है। वो पहले छठे चैप्टर का 10वां वचन में वो हमें कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। तो प्रभु कहता है कि हमें अपने शक्ति पे निर्भर नहीं होना है, या अपने ताकत पे भरोसा नहीं रखना है, या अपने बुद्धि पे भरोसा नहीं रखना है, या अपने जो बाइबल है उसका हम कितना जानते हैं उस पर भी हमें निर्भर नहीं होना है। हमें किस पर निर्भर होना है या किस पर हमें भरोसा रखना है? प्रभु की शक्ति पर हमें भरोसा रखना है, उसके प्रभाव पे हमें बलवंत बनना है। अगर हम इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिएगा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो चाहता है कि घर से बाहर जाए और खेले, लेकिन बाहर जाने से वो डरता है, बाहर जाके खेलने से डरता है। क्योंकि बाहर उससे भी बड़े लड़के, उससे भी बड़े बच्चे खेल रहे हैं। तो ये छोटा सा बच्चा ये सोचकर डरता है कि जो बड़े बच्चे हैं उसे डराए, जो बड़े बच्चे हैं उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, डरा सकते हैं। तो क्या करता है? वो अपने पिता के पास जाता है और पिता को कहता है कि उसके साथ बाहर आए खेलने के लिए। पिता बच्चे के साथ बाहर आता है और वहां खेलने लगता है उसके साथ। तो अब ये जो बच्चा है वो नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता? ये जो बच्चा अब जो है वो कमजोर नहीं है, वो अपने आप को ताकतवर समझता है, क्योंकि वो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखा उन्होंने। वो इसलिए नहीं डरता इसलिए वो बलवंत है, इसलिए वो ताकतवर है अब, क्योंकि वो अपने पिता के साथ है या पिता की ताकत पर भरोसा करता है। तो यही है 10वें वचन में, आयत में यही लिखा है कि हमें प्रभु की शक्ति, प्रभु पे और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहना है या बलवंत बनना है। तो हमें इसी बच्चे के जैसे हमें अपनी जो ताकत है, अपनी ताकत पर नहीं पर प्रभु और परमेश्वर की ताकत पर हमें भरोसा रखना है। एक जो विश्वासी है उसकी जो जिंदगी है वो एक युद्ध समान है। हम कह सकते हैं कि हमें लड़ना नहीं पसंद, हम कह सकते हैं कि हमें युद्ध में नहीं जाना, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार जब हम अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो जीवन है वो प्रभु को अगर हम हवाले करते हैं, तब और उसी दिन से हम शैतान की जो टारगेट है, शैतान के निशाने में हम रहते हैं। हमारा जो शत्रु है शैतान, वो हर वक्त और हर पल ढूंढते रहता है कि किस तरह से हमें चोट पहुंचाए, किस तरह से हमें गिराए, किस तरह से हमें नाकाम करे और किस तरह से हमें कमजोर कर सके ताकि हम उठकर लड़ न सके। लेकिन जब हम यीशु मसीह की बन जाते हैं, हम उसके सिपाही बन जाते हैं, और यीशु मसीह के सिपाही बनने के बाद हमारा जो सेनापति है वो है हमारा यीशु मसीह। तो सच्चाई ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम हर दिन युद्ध में रहते हैं, आत्मिक युद्ध, जो हमारे आत्मिक शत्रु के साथ हमारा युद्ध होता है। और हर एक युद्ध में तीन ऐसी चीजें जरूरी हैं, वो है अच्छे ताकतवर सिपाही, अच्छे हथियारों की जरूरत है, और सिपाहियों का जो है अपने जो सेनापति के साथ ताल्लुकात, ये तीन चीजें हर एक जो युद्ध है उसके लिए आवश्यक है। 11वें वचन में पढ़ेंगे हम, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार, कोई कमी नहीं, सारे हथियार, क्योंकि प्रभु जो है वो सब जानने वाला प्रभु है। वो जानता है कि क्या क्या जरूरतें हैं, किन किन चीजों की हमारे लिए जरूरत है ताकि हम युद्ध में कामयाब हो सके। तो ये इसलिए प्रभु कहता है कि हमें प्रभु ने जो दिए गए हथियार है वो सारे हथियार हमें लेना है। हम नहीं कह सकते कि एक हथियार हम नहीं लेंगे या दो हथियार हम लेंगे या तीन हथियार हम नहीं लेंगे, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि और ये कहता है कि हमें सारे हथियार को अपनाना है, सारे हथियार को पहनना है। वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां काफी और बहुत सारे हैं। शैतान अपनी युक्तियों के साथ हमें गिराना चाहता है, हमें हराना चाहता है, हमें कमजोर करना चाहता है ताकि हम उससे नहीं लड़ सके। तो आवश्यक बात यही है कि हमें प्रभु के सारे हथियार को पहनना है। 12वें वचन को पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इंसान जो अपने हथियार है इंसानों के खिलाफ बना सकता है, इंसान इंसानों के खिलाफ हथियार बना सकता है, लेकिन जो आत्मिक शत्रु हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ हम किस तरह से हथियार बना सकते हैं? तो इसलिए प्रभु हमें अपने जो आत्मिक शत्रु हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमें हथियार देता है, आत्मिक हथियार, आत्मिक युद्ध करने के लिए। ये जो हथियार जो प्रभु देता है ये प्रभु ने बनाए हैं, तो हमें उसे पहनना जरूरी है। जो 13वां वचन है, 13वां वचन में पढ़ेंगे हम, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यह बुरा या बुरे दिन का क्या अर्थ है? जो बुरा दिन जो है वो कोई भी दिन हो सकता है हमारे जिंदगी में, किसी भी दिन हो सकता है हमारे जिंदगी में। जब शैतान जो है अपनी जो दुष्ट फौज के साथ हमें कमजोर करने के लिए आ सकता है, बुरा जो दिन है उस दिन शैतान हमें हराने की कोशिश कर सकता है। एक ऐसा दिन दाऊद की जिंदगी में आया जब उन्होंने जो परमेश्वर का पूरा जो हथियार है वो नहीं पहना और इसलिए वो है हार चुके। ये जो दिन बुरा दिन जो दाऊद की जिंदगी में था, वो जो दिन था बत्शबे के साथ उन्होंने बुरा काम किया। वो एक राजा था, उसके पास दौलत ताकत, फिर भी ये जो आत्मिक शत्रुओं के सामने वो नाकामयाब हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का पूरा हथियार नहीं बांधा था। और एक मिसाल जो है बाइबल में जोसेफ के बारे में हम पढ़ते हैं। जोसेफ एक नौजवान कुंवारा उनकी जिंदगी में एक बुरा दिन आया जो शैतान उसे कमजोर और हराना चाहता था। पोतीपर की जो बीवी, उन्होंने जोसेफ को फुसलाना चाहा बुरा काम करने के लिए उन्होंने उनको उकसाया, लेकिन फिर भी जोसेफ जो था उन्होंने परमेश्वर का जो पूरा, जोसेफ की जिंदगी में ये जो बुरा दिन जब आया तब पोतीफर की बीवी उनको गलत काम करने के लिए उकसाया, फिर भी क्योंकि जोसेफ था उन्होंने परमेश्वर का जो पूरे हथियार उस दिन उन्होंने अपने पे चढ़ाया था, इसलिए वो शैतान की जो युक्तियां हैं उसके खिलाफ उसने जीत हासिल कर दी। तो हम पढ़ेंगे 14वें वचन में, सो सत्य से अपनी कमर कस कर, सबसे पहला जो हथियार जो प्रभु ने जो दिया है वो सत्य से अपनी कमर कस कर, इसका यह मतलब है कि सच्चाई से अपनी कमर को हमें कस कर रखना है, या कमर को कसने के लिए हमें एक बेल्ट की जरूरत होती है। तो प्रभु कहता है कि प्रभु ने हमें एक बेल्ट जो दिया है वो सच्चाई का बेल्ट, जिसे हम अपनी कमर को हम कस कर, जो अपने कपड़े हैं उसको कस कर हम रख सकते हैं, जो कमर में हम पट्टा जो लगाते हैं, कमर का जो पट्टा है वो है, प्रभु कहता है कि सच्चाई का बेल्ट, सच्चाई का बेल्ट। मान लीजिएगा कि एक सिपाही है, सिपाही जो युद्ध के लिए वो तैयार हो जाता है, सभी हथियार उन्होंने अपने पास ली है, लेकिन जो कमर का पट्टा है उन्होंने नहीं लिया। ऐसे स्थिति में क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जो बेल्ट है वो इसलिए पहना जाता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो सही बदन में रह पाए। तो अगर ये जो सिपाही हैं उन्होंने बेल्ट नहीं पहना और युद्ध में चला गया, तो युद्ध में अगर लड़ाई करते वक्त बेल्ट नहीं पहना इसलिए अपने जो कपड़े हैं वो लूज हो सकते हैं, और लूज होने के बाद जो सिपाही है वो आगे नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकने के इसलिए नहीं लड़ सकता है, उसके बाद वो हार भी, उसको चोट पहुंच सकती है, दुश्मन उसे मार भी सकते हैं। तो उसी रीति से अगर एक विश्वासी जो प्रभु का जो सिपाही है उन्होंने भी हर रोज इस सच्चाई का बेल्ट पहनना जरूरी है। तो हमारे लिए सच्चाई का बेल्ट का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हम इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं यूहन 17:17 में, यूहन 17:17 में हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में, सच्चाई का बेल्ट। यूहन 17:17 में हम पढ़ते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो सच्चाई का जो बेल्ट है उसका अर्थ है प्रभु का वचन, प्रभु का वचन जो सत्य है। शैतान जो है वो हमारे पास गलत तालीम, गलत शिक्षा, गुनाह के बारे में, खुदा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में या उद्धार के बारे में गलत शिक्षाएं लेकर आ सकता है। अगर हमने सच्चाई का बेल्ट नहीं पहना, इसका मतलब अगर हमने हम प्रभु के वचन के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम धोखा खा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि सच्चाई के बारे में हमें पता चले। सच्चाई क्या है? सच्चाई प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन के बारे में हमें मालूम होना जरूरी है। अगर हम सच्चाई का बेल्ट के बाद जो दूसरा जो हथियार जो प्रभु ने हमें दिया है, वो है धार्मिकता का कवच। धार्मिकता का कवच, या अगर हम सिपाही को देखते हैं तो सिपाही जो है पुराने जमाने में अपना जो शरीर है वो एक लोहे का जो कवच होता है ना, उसे वो लोहे का कवच पहनता था ताकि जो शत्रु हैं उनके जो तीर हैं, उनके जो तलवार है, उसे अपने शरीर को हिफाजत कर सकता था। तो हमारे लिए ये धार्मिकता का कवच का अर्थ क्या है? कवच, अगर कवच नहीं पहना तो सिपाही का मौत हो सकती है। अगर कवच नहीं पहना उन्होंने, तो दुश्मन का जो तीर है, दुश्मन का जो तलवार है, उसे चोट पहुंच सकता है। या फिर कवच में छेद है या होल्स है, फिर भी दुश्मन के जो तीर है वो सिपाही को चोट पहुंचा सकता है। तो हमारे लिए जो एक विश्वासी है, जो हम यीशु मसीह के जो सिपाही हैं, उनके लिए जो धार्मिकता का कवच का ये अर्थ है कि धार्मिकता यानी हमेशा सही करना, हमेशा सही सोचना और हमेशा सही बोलना, हमेशा सही करना, हमेशा सही सोचना और हमेशा सही सही बोलना, ये है धार्मिकता। और जो छेद जो होल्स जो है वो कवच में होल्स का ये अर्थ है कि हमारे जिंदगी में इनको ना, अगर कवच में होल से हमारी जिंदगी में गुनाह है तो हमें युद्ध में हम हार जाएंगे। अगर हमारे जिंदगी में गुनाह है, उसका ये अर्थ है कि जब हम शत्रु के सामने हम युद्ध में जाते हो, तो इसका ये अर्थ होगा कि हम युद्ध में जा रहे हैं बिना कवच के। कोई भी गुना जो गुप्त गुना है वो इस तरह से है जिस तरह से कवच में होल्स हो या कवच में छेद हो। तो अगर हम इस तरह का कवच हम पहनते हैं या कवच पहनते ही नहीं, तो हमारी जिंदगी में जीत नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो जो गुनाह है उसे त्याग देना है, तौबा करना है, मन फिराना है, तब जाके हम जो आत्मिक जो शत्रु है उसके साथ मुकाबला हम कर सकते हैं। तो पूरा हथियार की जरूरत है। जो प्रभु ने हथियार दिए हैं वो है सच्चाई का बेल्ट, धार्मिकता का कवच, और आगे देखते हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। सच्चाई का बेल्ट, धार्मिकता का कवच, और पांव में 15वें वचन में पढ़ेंगे, और पांव के सुलह के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। एक सिपाही जूता पहनता है या जूते पहनता है ताकि वो चल सके, ताकि वो दौड़ सके। अगर वो जूता नहीं पहनता तो चल ना पाएगा, दौड़ ना पाएगा। अगर वो चल ना पाएगा तो दौड़ ना पाएगा तो युद्ध में वो नाकामयाब होगा। तो हमारे लिए जो है ये जो जूते हैं वो है सुसमाचार के जूते, मेल मिलाप के जूते। तो इसका ये अर्थ है कि हमें जूते पहनना है। प्रभु चाहता है कि प्रभु ने हमें जूते दिए हैं, पैर दिए हैं, पांव दिए हैं ताकि जूते पहन सके। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम गलत जगह में चले जाएं अपने जूतों के साथ, अपने पैर के साथ। वो ये नहीं चाहता कि हम युद्ध में बिना जूते जाएं ताकि हम नाकामयाब हो। वो ये चाहता है कि हम अपने जूते के साथ युद्ध में चले जाएं। ये जूते हैं सुसमाचार के संदेश को लेकर हम चले जाएं। अगर हम जूते नहीं पहनते हैं, सुसमाचार नहीं कहते हैं, तो हम आत्मिक रूप से हम कमजोर बन जाते हैं और आत्मिक युद्ध में हम नाकामयाब हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उन्होंने हमें बचाया है, वो हमारा उद्धार करता है। उद्धार हम पा चुके हैं तो हमें दूसरों को भी प्रभु के उद्धार के बारे में हमें कहना है। तो आज सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम इसका शेष भाग हम सुनेंगे। तो आज हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें लड़ने के लिए हथियार दिए हैं ताकि हम कमजोर न बने, बल्कि शत्रु की जो युक्तियां हैं उसके खिलाफ हम दृढ़ता के साथ हम खड़े रह सकते हैं। आपने हमें सच्चाई का बेल्ट दिया है, आपका वचन दिया है, आपने हमें धार्मिकता का कवच दिया है ताकि हम हर वक्त हर पल अच्छा कहें, अच्छा सुने, अच्छा करें। जो सही है वो हम करें, जो सही है हम सोचें, और जो सही है वो हम बोले। और इसके पश्चात आपने हमें जूते दिए हैं जो आपका संदेश है वो दूसरे तक हम पहुंचाएं। आगे भी आपने हमें कई दूसरे हथियार दिए हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें शक्तिमान शक्ति से भरपूर कीजिए प्रभु, आपके पीछे और भी मजबूती से चलाएं, और भी ज्ञान दीजिए आपका वचन के बारे में जो सच्चाई सत्य है, ताकि हम शैतान की हर चाल से हम जान जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।